हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। धृति कुछ पल खामोशी से उसे देखती रही, फिर बिना कुछ कहे पूल के पास जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। अर्णव ने भी अब उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बस उसकी आंखों में झलकते दर्द, बेबसी, पीना को समझने की कोशिश करता रहा। पूल के पास आकर धृति की रुलाई छूट गई और अपने चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर वो वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। रात के लगभग 12 बजे अर्णव वहां पहुंचा और उसकी नज़र सीधे पूल के पास जमीन पर सोती धृति पर गई। शायद रोते रोते उसकी आंख लग गई थी और अब वो खुद में सिमटी हुई सी गहरी नींद में सो चुकी थी। अर्णव धीमे कदमों से उसके पास आया। वो उसके पास बैठ गया और थोड़ा सोचने के बाद उसकी ओर हाथ बढ़ाया, पर फिर हाथ वापस पीछे खींच लिया। कुछ सेकंड बाद नींद में ही धृति ने करवट ली और सीधी होकर लेट गई, पर अब भी उसके चांद से चेहरे पर बालों के घने बादल छाए हुए थे। अर्णव कुछ पल उसके पास बैठा, खामोशी से उसे देखते हुए उसकी कही बातों के बारे में सोचने लगा, जिसे चाहकर भी वो ना तो अपने दिमाग से निकाल पा रहा था और न ही झुठलाना संभव था। न चाहते हुए भी धृति के कहे शब्द उसके दिमाग में छाए हुए थे और अर्णव को मजबूर कर रहे थे उन पर विश्वास करने के लिए। अर्णव कुछ पल उन बातों के बारे में सोचता रहा जिन्हें वो चाहकर भी भुला नहीं पा रहा था और न ही उन पर विश्वास कर पा रहा था। फिर उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाकर धृति के चेहरे पर छाए बालों के गुच्छों को पीछे कर दिया। धृति का चांद सा खूबसूरत मासूम चेहरा उसके सामने आ गया। चांद की रोशनी में उसके चेहरे पर अलग ही नूर बिखरा हुआ था, जिसकी कशिश किसी को भी खुद में खोने पर मजबूर कर दे। उसके चांद से चेहरे पर अजीब सी मायूसी और दर्द के बादल छाए हुए थे, जो उसके नूर को फीका कर रहे थे। गालों पर आंसुओं की रेखाएं बनी हुई थीं, जो गवाही दे रही थीं कि वो यहाँ आकर कितना रोई है। अर्णव, जो हमेशा बस उसे तकलीफ पहुंचाने के तरीके ढूंढता था, कुछ देर पहले जिसने अपनी बातों और इल्ज़ामों से इतनी पीड़ा धृति को दी थी, अब उसे धृति का उदास चेहरा, गालों पर बने आंसुओं के निशान व्याकुल कर रहे थे। अर्णव कुछ पल खामोश सा, भावहीन निगाहों से उसे देखता रहा, फिर हौले से अपनी उंगली से उसके गाल को छुआ, तो धृति नींद में कसम सा उठी, पर अगले ही पल वापस सो गई। अर्णव ने गहरी सांस छोड़ी और धृति को ध्यान से संभाल कर अपनी बाहों में उठा लिया। नींद में धृति ने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और उसके सीने से अपना सिर टिका दिया। अर्णव उसे अपनी बाहों में उठाए अंदर आया और उसे ध्यान से बिस्तर पर बिठाकर जैसे ही पीछे हटना चाहा, धृति ने नींद में उसकी टी शर्ट पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसकी ओर करवट ले ली, जिससे अर्णव की बाँह उसके सिर के नीचे आ गई। अर्णव धृति की ओर झुका हुआ था। हर बात से बेखबर धृति वापस सो चुकी थी, पर अर्णव का चैन छिन चुका था। धृति की गर्म सांसें उसके चेहरे से टकरा रही थी और जिस्म में अजीब सी सिहरन दौड़ने लगी थी। अर्णव ने अपनी सांसें रोकते हुए अपना चेहरा फेर लिया और धृति के हाथ को खुद पर से हटाकर अपना हाथ उसके नीचे से निकालकर पीछे हट गया। अब जाकर उसने सांस ली। अर्णव ने खुद को शांत किया, फिर निगाहें धृति की ओर घुमाईं, जो चादर को मुट्ठी में जकड़ी सो रही थी। अर्णव की नज़रें उसके चेहरे पर ठहर गईं और उसने उसे अपलक निहारते हुए खुद से ही कहा, कितनी मासूमियत झलकती है तुम्हारे चेहरे पर, काश कि तुम वैसी ना होती, काश तुमसे मेरा अतीत और उसकी कड़वी दर्दनाक यादें ना जुड़ी होती, तो मैं कभी तुम्हारी आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं आने देता। पता नहीं क्यों, पर मेरा दिल तुम पर, तुम्हारी बातों पर विश्वास करना चाहता है, पर जो तुमने मेरे और मेरे परिवार के साथ किया, उसके बाद मैं तुम पर चाहकर भी विश्वास नहीं कर सकता। क्या से क्या बना दिया है तुमने मुझे, ऐसा नहीं था मैं, और न ही मैंने कभी सपने में भी सोचा था कि मैं किसी लड़की के साथ ऐसा सलूक करूंगा, पर तुमने और तुम्हारी हरकतों ने मुझे ऐसा बनने पर मजबूर कर दिया। जो तुमने किया उसका हिसाब चुकाना होगा तुम्हें, वो सब सहना होगा जो तुम्हारे वजह से किसी दूसरे ने सहा। इतनी आसानी से आज़ादी नहीं मिलेगी तुम्हें, तुम्हें महसूस करना होगा हर वो दर्द जो तुमने दूसरों की किस्मत में लिखा है। एक बार फिर अर्णव के चेहरे पर कड़वाहट झलकने लगी और आंखों में धृति के लिए नफ़रत की ज्वाला धधक उठी। जाने इस धधकती आग में और क्या क्या जलकर राख होने वाला था। अर्णव ने हीन निगाहों से धृति को देखा और सोफे पर आकर लेट गया। काफ़ी देर तक उसका मन अतीत की यादों में गोते लगाता रहा। चेहरे के भाव पल पल बदलते रहे। अंत में उसने दर्द भरी आह छोड़ते हुए अपनी आंख बंद कर ली। अगली सुबह धृति की आंख दर्द के कारण जरा जल्दी खुल गई। उनींदी आंखें खोलकर उसने आसपास देखा तो खुद को पूल के पास देखने की जगह यहाँ कमरे में देखकर उसकी सारी नींद एक झटके में उड़ गई और वो हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थीं। कमरे में निगाहें घुमाते हुए वो बीती रात के बारे में सोचने लगी। उसे अर्नव से बहस, उसके इल्ज़ाम याद आए और साथ ही खुद का पूल के पास जाना भी याद आया। यही सब सोचते हुए उसकी नज़र सोफे पर सो रहे अर्नव पर गई। अब वो और ज्यादा चौंक गई। पहले उसने खुद को देखा, फिर अर्नव को, और खुद से ही बोली, मैं तो पूल के पास रोते रोते फर्श पर ही सो गई थी, फिर मैं यहाँ कब और कैसे आई? क्या आप मुझे नींद में उठाकर यहाँ लेकर आए? पर आपने ऐसा क्यों किया? और मुझे यहाँ बिस्तर पर सुलाकर आप सोफे पर क्यों सोए हैं? क्या मेरे वजह से आप उस छोटे से सोफे पर सोए हैं? पर क्यों, मुझसे नफरत करते हैं ना, फिर ये परवाह का दिखावा क्यों कर रहे हैं? क्या ये भी आपका कोई नया प्लान है मुझे तकलीफ पहुंचाने का? धृति खुद से जाने कितने ही सवाल किए पर किसी एक का भी जवाब न मिल सका उसे, और अंत में उसने खुद ही अंदाजा लगा लिया कि अर्नव के इस व्यवहार के पीछे भी कोई वजह होगी। धृति ने अब अर्नव को देखते हुए आगे कहना जारी रखा, मैं जानती हूँ आप नफरत करते हैं मुझसे, बेहद नफरत करते हैं, जिसकी वजह तक नहीं जानती मैं अब तक। मेरा दर्द, मेरी तकलीफ आपको राहत पहुंचाती है। पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे आपकी नफरत सहनी पड़ रही है, पर शायद कुछ बहुत गलत किया होगा तभी इस कदर नफरत करते हैं आप मुझसे। पर आप मेरे बारे में इतना गलत क्यों सोचते हैं? माना आपको नफरत है मुझसे, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इतनी गंदी बातें कहें मेरे बारे में। माना ये शादी आपने बस मुझसे बदला लेने के लिए की है, पर हूँ तो मैं आपकी पत्नी, फिर आप कैसे अपनी ही पत्नी के चरित्र पर सवाल उठा सकते हैं? उसे एक चरित्रहीन लड़की कह सकते हैं? जानते क्या हैं आप मेरे बारे में जो इतनी गंदी और घटिया बातें कहते हैं आप मेरे बारे में? पता है मैं सब सह सकती हूँ, आपकी नफरत, आपका गुस्सा, आपकी बेरुखी, आपकी दी तकलीफ, पर अपने चरित्र पर सवाल बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। ये हक तो मैंने अपनी माँ को भी नहीं दिया, पर आपके वजह से मैं उनकी नज़रों में भी एक बेशर्म लड़की बन गई, और अब आप भी मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पर इस बार मैं पलटकर कुछ नहीं कहूँगी, आपको जो सोचना है सोचिए, मैं आपको अपनी सच्चाई का सबूत नहीं दूंगी, ऐसा रिश्ता ही नहीं हमारा, और अगर हमारा रिश्ता नॉर्मल होता तब भी आपके मुझ पर शक करने पर मैं आपको अपनी पवित्रता का विश्वास दिलाने की कोशिश कभी नहीं करती।
वाहर इल्ज़ाम की तरह ये इल्ज़ाम भी सह लूंगी मैं, क्योंकि ना आज तक आपको कभी मुझ पर विश्वास हुआ है और ना ही अब आप मेरी सच्चाई को देख सकेंगे। शायद कभी आपकी आंखों पर बंधी नफरत की पट्टी खुले तो आपको नज़र आए कि मैं वैसी बिल्कुल नहीं जैसा आप मुझे समझते हैं। शायद तब आपको एहसास हो कि अपने शब्दों से आपने कितनी तकलीफ पहुंचाई है मुझे। पर पता नहीं तब तक मैं इस दुनिया में या आपके पास होंगी भी या नहीं, क्योंकि इस जिल्लत भरी जिंदगी का बोझ उठाना मेरे लिए अब नामुमकिन होने लगा है। धृति की आंखों में नमी तैर गई और गला चोक हो गया। उसने अर्नव पर से निगाहें फेर लीं और उठकर कपड़े लेकर नहाने चली गई। अर्नव की नींद खुली और उठकर बैठा तो नज़र ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी धृति पर गई, जो चुटकी भर सिंदूर अपनी मांग में सजा रही थी। पीच कलर का प्यारा सा कुर्ता पहना था उसने, दुपट्टे को गले से चिपका कर डाला हुआ था। हमेशा की तरह आज भी लंबे घने बालों को गूंथकर एक चोटी में बांधा हुआ था, जो उसकी पीठ पर नाबीन सी लहरा रही थी। कुछ छोटी छोटी लटें उसके गालों पर अटखेलियां दिखा रही थीं। आंखों में गहरा काजल लगा था, होंठों पर पिंक लिप ग्लॉस, इसके अलावा कोई संवारा संवारा श्रृंगार नहीं था। रोज जैसे ही तैयार हुई थी वो आज भी ऑफिस जाने के लिए, पर आज कुछ अलग सी लग रही थी, या शायद बस अर्नव को ही अलग लग रही थी। अर्नव की नज़र उसके चेहरे पर ठहर गई। पीच कलर में बहुत प्यारी लग रही थी वो, लेकिन उसके चांद से चेहरे का नूर आज कहीं गायब था। अर्नव धृति को ही देख रहा था। जब धृति को आईने में अर्नव का प्रतिबिंब दिखा और अगले ही पल वो आईने के सामने से हट गई। इसके साथ ही अर्नव अपने होश में लौट आया और उस पर से अपनी निगाहें हटाते हुए उठकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद जब वो लौट कर आया तो कमरा खाली था और उसके कपड़े के साथ बाकी सब चीज़ें भी बिस्तर पर सलीके से रखी हुई थीं। मतलब साफ था कि धृति अपनी ये जिम्मेदारी निभाकर यहाँ से जा चुकी थी। अर्नव आज जरा लेट उठा था तो जिम न जाते हुए वो सीधे नहाने चला गया। आज भी दोनों ने साथ ही नाश्ता किया। इस दौरान धृति ने एक बार भी उसकी ओर देखा तक नहीं। अर्णव की नजरें रह रहकर धृति के चेहरे की ओर घूम रही थीं, जहां आज अजीब सी खामोशी के साथ गहरी उदासी भी झलक रही थी। हालांकि शादी के बाद से अर्णव ने कभी धृति को खुश नहीं देखा था, पर इतना उदास भी नहीं देखा था। आज इस खामोशी के पीछे उसके दर्द के साथ मौन शिकायत भी छुपी थी, जिसका अंदाज़ा अभी अर्णव को नहीं था और धृति भी नहीं जानती थी कि किस हक से नाराज है वो उससे। खैर, नाश्ते के बाद धृति जैसे ही खाली बर्तन उठाकर जाने लगी, उसके कानों में अर्णव की आवाज़ पड़ी और उसके आगे बढ़ते कदम ठिठक गए। बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा, जल्दी आना। अर्णव की बात सुनकर धृति उसकी ओर पलटी और बिना किसी भाव के बोली, इस एहसान की ज़रूरत नहीं, जैसे मैं रोज़ जाती हूँ आज भी वैसे ही चली जाऊँगी। इतना कहकर धृति वहाँ से चली गई। उसका जवाब और जवाब देने का लहजा दोनों ही अर्णव को नाकाबिले बर्दाश्त गुज़रा। उसके अहम को ठेस पहुँची कि उसने धृति को साथ चलने कहा, पर उसने इनकार कर दिया। अर्णव अब एक पल भी वहाँ नहीं ठहरा और सीधे ऑफिस के लिए निकल गया। धृति भी कुछ देर बाद ऑफिस के लिए रवाना हो गई। ऑफिस पहुँचकर जब उसने अपने फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट ली, तो उसमें कुछ और लड़कियाँ भी थीं और साथ ही लड़के भी थे जो उसी फ्लोर पर जाने वाले थे। धृति सबसे आगे खड़ी थी, पीछे खड़े कर्मचारियों की धीमी धीमी सी आवाज़ उसके कानों तक पहुँच रही थी। अरे, ये तो वही लड़की है ना, वो उस सर की नई पीए। हाँ, वही है, धृति नाम है इसका। अरे, इसको कौन नहीं जानता, पूरे ऑफिस में फेमस है ये। फेमस तो होगी ही, आखिर ASR के साथ काम जो करती है, कौन जाने सिर्फ काम ही करती है या कुछ और भी करती है। उनमें से एक ने तिरछी निगाहों से धृति को घूरते हुए कहा। उसके बात सुनकर बाकी कर्मचारियों में से एक ने हैरानी से कहा, कहना क्या चाहता है तू, इसमें कहना क्या है यार, सब सामने है और सबको नजर आता है, काम के बहाने यहाँ कुछ और ही चल रहा है। मुझे तो लगता है कि सर से कुछ अलग तरह का रिश्ता है इसका, तभी तो इतनी आसानी से इतनी अहम पोस्ट मिल गई इसे, जबकि है तो फ्रेशर ही, उस पर पीए है सर की, सारा वक्त उनके साथ, उनके केबिन में अकेली रहती है। अब बंद दरवाजे के पीछे काम होता है या काम के बहाने रोमांस, ये कौन जानता है। बात तो तेरी सही है, फिर ये है भी तो खूबसूरत, जरूर अपनी इसी खूबसूरती और मासूमियत को दिखाकर इसने सर को फंसाया होगा, तभी तो सर ने इसे अपने केबिन में काम करने की इजाज़त दी है। मैंने तो सुना है दोनों को कई बार करीब देखा भी गया है, और कल की ही बात ले ले, सर इसे अपनी बाहों में उठाकर लेकर जा रहे थे। भला कोई बॉस अपनी एम्प्लॉय के साथ इतना कोजी होता है, जरूर कोई और ही रिश्ता है दोनों के बीच। पर यार, ये तो शादीशुदा है, एक ने धृति के मांग में भरे सिंदूर को देखते हुए तर्क रखा, जिस पर पहले वाली ने बेफिक्री से जवाब दिया। तो क्या हुआ, शादीशुदा है पर पति तो यहाँ नहीं, तो यहाँ तो अपने हुस्न और खूबसूरती का फायदा उठा ही सकती है, कौन सा उसका पति यहाँ देखने आ रहा है कि ये यहाँ आकर काम कर रही है या मजे मार रही है। खैर, जो भी कहो, पर इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, अर्णव सर को अपने फेवर में करना इतना आसान नहीं, पर इसने तो उन्हें अपने बस में किया हुआ है। घर पर अपने पति के साथ ऐश करती होगी और यहाँ सर मिल गए, इसकी तो चांदी ही चांदी है, सर के सहारे बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगी ये, और हम बस मेहनत ही करते रह जाएंगे। ऐसी ही जाने कितनी बातें हो रही थी उनके बारे में, धृति के शादीशुदा होने और अर्णव के साथ उसके रिश्ते को लेकर सबकी अलग अलग राय थी। कुछ उससे जल रहे थे तो कुछ उसे गंदे गंदे नामों से नवाज रहे थे। कुछ के लिए वो गोल्ड डिगर और एक चालबाज लड़की बन गई थी, जो अपने रूप का फायदा उठाकर अपना करियर बना रही थी। जितनी मुंह उतनी बातें हो रही थी वहाँ। हालांकि वे धीरे धीरे बात कर रहे थे, पर लिफ्ट में सब पास ही थे तो आवाज़ें धृति के कानों तक भी पहुँच रही थीं, पर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, ऐसा ही दिखाया कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। धृति को आज पता चला कि यहाँ उसके बारे में ऐसी भी बातें होती हैं, पर उसे इन बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसकी अपनी माँ, जिसने उसे जन्म दिया, जब उन्होंने उसे नहीं समझा तो इन अजनबियों से वो उम्मीद ही क्या रख सकती थी। धृति का उस लिफ्ट के अंदर दम घुटने लगा था। एक तो उसकी हालत पहले ही ठीक नहीं थी, उस पर अर्णव की कल की बातें उसके सीने में चुभन का एहसास पैदा कर रही थीं, और अब ये सब। धृति किसी तरह खुद को जब्त किए वहाँ खड़ी थी, और लिफ्ट खुलते ही वो सबसे पहले लिफ्ट से बाहर निकल गई। वो भागकर सीधे वॉशरूम में घुस गई। कुछ पल दरवाजे से लगकर खड़ी उन सब की कही बातों के बारे में सोचती रही, फिर उसने जाकर दो चार बार अपने चेहरे पर पानी डाला, फिर मुंह पोंछकर खुद को रिलैक्स करते हुए वहाँ से निकलकर अर्णव के केबिन की ओर बढ़ गई। हर आगे बढ़ते कदम के साथ उस पर टिकी लोगों की नज़रों का एहसास हो रहा था, जो उसके मन को अंदर तक भेदती जा रही थीं।